ख्रीस्ट की ओर कदम, मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम, ईश्वर के पुनीत प्रेम की साक्षी सारी प्रकृति और समस्त श्रुतियां दे रही है। हमारी प्राणमयी चेतना, प्रतिभापूर्ण बुद्धि और उल्लासमय आनंद के उद्गम और स्रोत स्वर्ग के हमारे परमपिता परमेश्वर ही है। प्रकृति की मनोमुग्धकारी सुषमा पर दृष्टि तो डालिए, ये विचार तो कीजिए कि प्रकृति की सारी वस्तुएं किस अद्भुत रीति से न केवल मानव कल्याण के लिए अपितु प्राणी मात्र के हित के लिए अपने रूप गुण परिवर्तित कर अनुकूलता ग्रहण कर लेती है। सूरज की अमृतमयी किरणें और मत्त रागनी से भरी रिमझिम वर्षा, जिससे पृथ्वी ऊर्जस्वित एवं पुलकित हो उठती है। कविता पंक्तियों की तरह पर्वत मालाएं, जीवन के स्पंदन से भरी समुद्र की तरंगें और वैभव सुहाग में प्रफुल्लित श्यामला भूमि, इन सब से सृष्टा का अनंत प्रेम फूट रहा है। स्तोत्रकर्ता कहता है, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको समय पर आहार देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। भजन संहिता 145 आयत 15-16। ईश्वर ने मनुष्य को पूर्णतः पवित्र और आनंदमय बनाया, और जब ये पृथ्वी सृष्टि के हाथों से बनकर आई तो न तो इसमें विनाश का चिन्ह था और न श्राप की काली छाया ही इस पर पड़ी थी। ईश्वर के नियम चक्र, प्रेम के नियम चक्र के अतिक्रम से संताप और मृत्यु पृथ्वी में आ घुसी। फिर भी पाप के फलस्वरूप जो कष्ट और संताप आ जाते हैं, उनके बीच भी ईश्वर का अमित प्रेम प्रकट होता है। पवित्र शास्त्र में ये लिखा है कि मनुष्य के हित के लिए ही ईश्वर ने पृथ्वी को शाप दिया। जीवन में जो कांटे और भटकटैया की झाड़ियां उगाई, ये पीड़ाएं और यातनाएं जो मानव जीवन को संग्राम, परिश्रम और चिंताओं से पूर्ण बना रही हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए ही आईं, क्योंकि ये मनुष्य को उद्बोधन और जागृति के संदेश दे अनुशासित करती है, ताकि मनुष्य ईश्वरीय विधान की कामोन्नति के लिए सतत क्रियाशील रहे और पाप द्वारा लाए गए विनाश और अधपतन से ऊपर उठे। संसार का पतन हुआ है, किंतु ये सर्वांशतः आह और यातनाओं से पूर्ण नहीं। प्रकृति में ही आशा और सुख के संदेश निहित है। भटकटैयों पर फूल उगे हुए हैं और कांटों के झुरमुट कलित कलियों में लद गए हैं। ईश्वर प्रेम है। ये सूक्ति प्रत्येक फूटती कली पर, प्रत्येक उगती घास की नोक पर लिखी है। रंग बिरंगी चिड़िया जो अपने कलित कलरव से वातावरण को मुखरित कर देती है, अपरूप रंगों की चित्रकारी से सजी कलियां और कमनीय कुसुम जिनसे साग समीरण सुषमित सुहास से मत्त हो जाता है, और वन प्रांत की ये विशाल वृक्षावलियां जिन पर जीवनमयी हरितिमा सदैव विराज रही हैं, ये सब ईश्वर के कोमल हृदय और उसके पिता तुल्य वात्सल्य के चिन्ह है। ये उसकी उस इच्छा के प्रतीक है जिससे वो अपने प्राणियों को आनंद विभोर करना चाहता है। ईश्वर के प्रत्येक वचन से उसके गुण देखे जा सकते हैं। उसने स्वयं अपने प्रेम और दया की अनंतता प्रकट की है। जब मूसा ने प्रार्थना की कि मुझे अपना गौरव दिखा, तो ईश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुम्हें अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। निर्गमन 33 आयत 18-19। यही तो उसका गौरव है। ईश्वर ने मूसा के सामने प्रकट होकर कहा, यहोवा, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने हारा, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने हारा है। निर्गमन 34 आयत 6-7। ईश्वर तो विलंब से कोप करने हारा करुणा निधान है, क्योंकि वो करुणा में प्रीति रखता है। मीका 7 आयत 18। ईश्वर ने हमारे हृदय को अपने से इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग में असंख्य चिन्हों द्वारा बांध रखा है। प्रकृति के पदार्थ के द्वारा और पृथ्वी के गंभीरतम और कोमलतम संबंधों के द्वारा ईश्वर ने अपने आप को ही व्यक्त किया है। फिर भी इन वस्तुओं से ईश्वर के अनंत प्रेम का एक वुदांश ही प्रकट होता है। उसके प्रेम की साक्षी अनंत थी, तो भी मनुष्य अमंगल भावना द्वारा अंधा बना। वह ईश्वर की ओर भय विस्फारित नेत्रों से देखने लगा तथा उसे क्रूर एवं क्षमाहीन समझा। शैतान ने मनुष्यों को ईश्वर के बारे कुछ ऐसा समझाया कि लोग उसे बड़ा कड़ा शासक समझने लगे, निर्दय निष्पक्ष न्यायकर्ता और क्रूर तथा खरा कर्जा चुकता लेने वाला। उसने ईश्वर का जो रूप रखा उसमें ईश्वर का ऐसा जीव चित्रित हुआ जो लाल लाल आंख किए हमारे समस्त कामों का निरीक्षण करता हो ताकि हमारे भूले और गलतियां पकड़ ली जाएं और उचित दंड मिले। ईश्वर के अमित प्रेम को व्यक्त एवं प्रत्यक्ष कर इस काली छाया को दूर करने के लिए ही यीशु मसीहा मनुष्य के बीच अवतरित हुए। ईश्वर पुत्र स्वर्ग से परमपिता को व्यक्त एवं प्रकट करने के निमित्त अवतरित हुए। किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मत्ती 11:28। जब एक शिष्य ने प्रार्थना की कि मुझे पिता को दिखा, तो यीशु ने कहा, मैं इतने दिवस तुम्हारे साथ हूं और क्या मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कर कहता है कि पिता को हमें दिखा? यूहन्ना 14:8-6। अपने पृथ्वी के संदेश के बारे में यीशु ने कहा, प्रभु ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। यही उनका संदेश था। वे चारों ओर शुभ और मंगल मुखरित करते हुए शैतान के द्वारा शोषित लोगों को मुक्त एवं सुखी करते हुए घूमते थे। पूरे के पूरे विस्तृत गांव थे जहां से किसी भी घर से किसी भी रोगी की कराहने की आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि गांव से होकर यीशु गुजर चुके थे और समस्त रोगों को दूर कर चुके थे। यीशु के ईश्वरीय साधक गुणों के प्रमाण यीशु के कार्य ही थे। प्रेम, करुणा और क्षमा यीशु के जीवन के प्रत्येक काम में भरी हुई थी। उनका हृदय इतना कोमल था कि मनुष्य के मासूम बच्चों को देखते ही वह सहानुभूति से पिघल जाता था। उन्होंने मनुष्यों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मुसीबतों को समझने के लिए ही अपना बाह्य और अंतस्वमाद मनुष्यों के जैसा बना लिया था। इनके समक्ष जाने में गरीब से गरीब को और नीच से नीच को जरा भी हिचक नहीं होती। छोटे बच्चे उन्हें देख खींचे आते थे और उनके घुटनों पर चढ़कर उनके गंभीर मुख को, जिससे प्रेम की ज्योति किरणें फुट निकलती थी, निहारना बहुत पसंद करते थे। यीशु ने सत्य के किसी अंश को, किसी शब्द तक को दबाया या छुपाया नहीं, किंतु सत्य उन्होंने प्रिय रूप में ही, प्रेम से बने शब्दों में ही कहा। जब भी वे लोगों से संभाषण करते तो बड़ी चतुराई के साथ, बड़े विचारमग्न होकर और पूरी ममता और सावधानी के साथ। वे कभी रूखे न हुए, कभी भी फिजूल और कड़े शब्द न बोले, और भावुक हृदय को कभी अनावश्यक शब्द न बोले जो उसे बिंध दे। मानुषी दुर्बलताओं की कटु और तीव्र आलोचना उन्होंने कभी न की। उन्होंने सत्य तो कहा, किंतु वह सत्य खरा होने पर भी प्रेम में सरस रहता। उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास और अन्याय के विरुद्ध बातें की, किंतु उनके फटकार के उन शब्दों में आंसू छलक रहे थे। जब यरूशलेम के शहर ने उन्हें, उनके मार्ग को, सत्य को और जीवन को प्राप्त करने से इनकार कर दिया, तो वे उस शहर के नाम पर, जिसे वे प्यार करते थे, रोने लगे। वहां के लोगों ने उनको अस्वीकृत किया, अपने उद्धारकर्ता को अंगीकार करना अस्वीकार किया। फिर भी उन्होंने उन लोगों पर सकरुणा और प्रेम भरी ममता की दृष्टि डाली। उनका जीवन ही उत्सर्ग था, आत्मत्याग का आदर्श था और परमार्थ के लिए बना था। उनकी आंखों में प्रत्येक प्राण अमूल्य था। उनके व्यक्तित्व में सदा ईश्वरीय प्रताप रहता। फिर भी उस परमपिता परमेश्वर के विशाल परिवार के प्रत्येक सदस्य के सामने वे पूरी ममता और सहृदयता के साथ झुके रहते थे। उन्होंने सभी मनुष्यों को पतित देखा और उनका उद्धार करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। यीशु मसीह के जीवन के कार्यों से उनके चरित्र का ऐसा ही उज्ज्वल रूप प्रतिभासित होता है, और ऐसा ही चरित्र ईश्वर का भी है। उस परमपिता के करुणा हृदय से ही ममतामयी करुणा की धारा मनुष्यों के बच्चों में प्रवाहित होती है, और वही ख्रीष्ट में अबाध गति से प्रवाहमान थी। प्रेम से ओतप्रोत कोमल हृदय उद्धारकर्ता यीशु ही थे जो शरीर में प्रकट हुए। एक तिमुथियुस 3:16, केवल हम लोगों के उद्धार के लिए ही यीशु ने जन्म ग्रहण किया, क्लेश भोगे तथा मृत्यु सहा। वे दुखी पुरुष हुए ताकि हम लोग अनंत आनंद के उपभोग के योग्य बन सकें। ईश्वर ने विभूति और सत्य से आलोकित अपने प्रिय पुत्र को राशि राशि सौंदर्य के लोक से वैसे लोक में भेजना अंगीकार किया जो पाप से विक्षत और विनष्ट और मृत्यु की कालिमा तथा श्राप की धूमिल छाया से कलुषित हो गया था। उन्होंने उन्हें अपने प्रेममय अंतर प्रदेश को और दूतों से महिमान्वित दशा को तथा लांछना, कुत्ते अवहेलना, घृणा और मृत्यु तक सहने के लिए उन्हें इस लोक में आने दिया। जिस तारना से हमारे लिए शांति उपजे सो उस पर पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो सकें। यशाया 53:5। उन्हें उस झाड़ झंखार में फंसे देखिए, गतसमने में त्रस्त देखिए, क्रूस पर अटके हुए देखिए। परमपिता के पुनीत पुत्र ने सारे पापों का भार अपने कंधों पर ले लिया कि ईश्वर और मनुष्य के बीच पाप कैसी गहरी खाई खोद सकता है। इसी कारण उनके होठों से वह करुणा चीत्कार फूट निकली, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46। पाप के बोझिल भार से उसके भीषण गुरुत्व के भाववश आत्मा के ईश्वर से विमुख हो जाने के कारण ही ईश्वर के प्रिय पुत्र का हृदय टूक टूक हो गया। किंतु ये महान बलिदान इसलिए नहीं हुआ कि परमपिता के हृदय में मनुष्य के लिए प्रेम उत्पन्न होवे, और इसलिए भी नहीं कि ईश्वर रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाए, नहीं, इसलिए कदापि नहीं हुआ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। परमपिता हम सबको पहले से प्यार करते हैं, वे इस बलिदान और प्रायश्चित के कारण प्यार नहीं करते, वरन प्यार करने के कारण ऐसा बलिदान करते हैं। यीशु मसीह एक माध्यम थे जिससे होकर इस अद्यतित संसार में ईश्वर ने अपने अपार प्रेम को उछाला। परमेश्वर मसीह में होकर जगत के लोगों को अपने साथ मिला लेता था। 2 कुरिन्थियों 4:16। अपने प्रिय पुत्र के साथ साथ ईश्वर में भी क्लेश सहे, गत समने के यात्र लाभों के द्वारा और कलवरी की मृत्यु लीला के द्वारा करुणामय दयासागर प्रभु के हृदय ने हमारी मुक्ति का मूल्य चुका दिया। यीशु मसीहा ने कहा, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर लेऊं। यूहन्ना 10:17। मेरे पिता ने आप सबों को इतना प्यार किया है कि उसने मुझे और भी अधिक प्यार करना शुरू किया, क्योंकि मैं आपके परित्राण के लिए अपना जीवन अर्पण किया। आपके समस्त फण और आपके सारे अपराधों का भार मैं अपने जीवन को बलिदान चढ़ाकर ग्रहण करता हूं, और तब मैं आपके एवज में रहूंगा, आपके लिए एकमात्र विश्वसनीय भरोसा बन जाऊंगा, और इसलिए मैं अपने परम पिता का अनन्यतम प्रेमी हो उठूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान के द्वारा ईश्वर की निष्पक्ष न्याय प्रियता सिद्ध होगी और यीशु पर विश्वास करने वालों का वह पाप मोचक भी होगा। ईश्वर के पुत्र के सिवा किसकी शक्ति है जो हम लोगों की मुक्ति संपादित कर सके, क्योंकि ईश्वर के विषय घोषणा केवल वो ही कर सकता है जो उसकी गोद में हो और जो ईश्वर के अनंत प्रेम की गहराई और विपुल विस्तार को जानता हो। उसी के लिए उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। अध्यपतित मानव के उद्धार के लिए जो अप्रतिम बलिदान यीशु ने किया, उससे कम किसी भी अन्य कार्य के द्वारा ईश्वर का वह अनंत प्रेम व्यक्त नहीं हो सकता था जो उसके हृदय में विनष्ट मानव के प्रति भरा है। ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उसने उन्हें न केवल इसलिए अर्पित किया कि वे मनुष्यों के बीच रहे, उनके पाप का बोझ उठाए और इनके बलिदान के लिए मरे, किंतु इसलिए भी अर्पित किया कि अधपतित मानव उन्हें ग्रहण करे। यीशु मसीह को मनुष्य मात्र की रुचि और आवश्यकताओं का प्रतीक बनना था। ईश्वर के साथ एक रहने वाले यीशु ने मनुष्य के पुत्रों के साथ आपने को ऐसे कोमल संबंधों द्वारा बांध रखा है कि वे कभी खुलने या टूटने के नहीं। यीशु उन्हें भाई कहने से नहीं लजाते। इब्रानियों 2:11। वे हमारे बलिदान हैं, हमारे मध्यस्थ हैं, हमारे भाई हैं। वे परमपिता के सिंहासन के नीचे हमारे रूप में विचरते हैं और मनुष्य पुत्रों के साथ युग युगांतर तक एकाकार है, क्योंकि उन्होंने हमें मुक्त किया है। उन्होंने ये सब सारा केवल इसलिए किया कि विनाशकारी और ध्वंसात्मक पाप के नरक से मनुष्य उद्धार पावे और वो ईश्वर के पुनीत प्रेम की प्रतिछाया प्रदर्शित करे और पवित्र आनंद में स्वयं भी विभोर होने के योग्य बन सके। ईश्वर को हमारी भक्ति का महंगा मूल्य भुगतना पड़ा, अर्थात हमारे स्वर्गीय पिता को अपने पुत्र तक को हमारे लिए मरने के हेतु अर्पण कर देना पड़ा। इससे हम कितने गौरव गरिमा से भरी कल्पना कर सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम क्या पा सकेंगे। जब प्रेरित योहन ने नाश होती मनुष्य जाति के प्रति ईश्वर के अनंत प्रेम की ऊंचाई, गहराई, विस्तार आदि देखा, तो वह विस्मय विमुग्ध हो गया और उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर उठा। वो इतना भाव गदगद हुआ कि उसके पास ईश्वर के प्रेम की अनंतता और कोमलता के वर्णन के लिए शब्द ही न रहे और वो केवल जगत को ही पुकार कर दर्शन कर लेने को कह सका, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। 1 यूहन्ना 3:1। इससे मनुष्य का मान कितना बढ़ जाता है। अपराधों के द्वारा मनुष्य के पुत्र शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं, किंतु यीशु मसीहा के प्रायश्चित रूप बलिदान पर भरोसा करके आदम के पुत्र ईश्वर के पुत्र बन जा सकते हैं। यीशु ने मनुष्य रूप ग्रहण कर मनुष्यों को गौरवान्वित किया। अब पतित मनुष्य ऐसे स्थान पर आ गए जहां से ख्रीष्ट से संबंध जोड़ वे ऐसे गरिमामय हो सकते हैं कि ईश्वर के पुत्र के नाम से पुकारे जा सके। ये प्रेम अद्वितीय है, अनूप है, स्वर्ग के राजा की संतान। कितनी अमूल्य प्रतिज्ञा है। कठोर तपस्या के लिए ये उपयुक्त विषय है। ईश्वर का अप्रतिम प्रेम उस संसार पर न्योछावर है जिसने उसे प्यार नहीं किया। ये विचार आत्मा को आत्मसमर्पण के हेतु बाध्य करता है और फिर ईश्वर की इच्छा शक्ति द्वारा मन बंधी बना लिया जाता है। उस क्रूस की किरणों के प्रकाश में हम जितना ही उस ईश्वरीय चरित्र का मनन करते हैं, उतना ही दया, करुणा, क्षमा, सच्चरित्रता और न्यायशीलता के उदाहरण पाते हैं और उतने ही असंख्य प्रमाण उस अनंत प्रेम का पाते हैं एवं उस दया को पाते हैं जो माता की ममत्व भरी वात्सल्य भावना से भी अधिक है।